समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का हमारा विषय है नेत्रदान यानी आई डोनेशन। कहते हैं आंखों से कीमती कोई रत्न नहीं और नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं। सोचकर भी डर लगता है, कैसे होती होगी वो दुनिया जहां कोई रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकृति की कोई खूबसूरती नहीं, है तो सिर्फ अंधेरा। ऐसे ही बहुत सी जिंदगियों को अंधकार से निकालकर रोशनी के उजाले में लाने की सोच और उम्मीद के साथ नेत्रदान पखवाड़ा हर वर्ष 25 अगस्त यानी इस बार कल से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। उद्देश्य यही है, संकल्प लें और अंधेरी दुनिया में रोशनी बिखेरने के लिए आगे आएं। आज पब्लिक स्पीक में हम इसी विषय यानी नेत्रदान पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई स्पेशलिस्ट शिखा जैन। डॉक्टर शिखा नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्कार लवलीन जी, और मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
जी आपका धन्यवाद, आप यहाँ आई और हमारे श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देंगे जो उनके मन में वो जानना चाहते हैं नेत्रदान से संबंधित। अतः श्रोताओं, आपके मन में भी नेत्रदान से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े। हाँ, ये आप ही का कार्यक्रम है, बाइलिंगुअल है, आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444233144 और 011-2342-1050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और इससे पहले डॉक्टर शिखा हम आगे बढ़े, दरभंगा बिहार से एक श्रोता जो है जुड़ भी चुके हैं इस कार्यक्रम से, मोहन पासवान उनका नाम है, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो।
हेलो, नमस्ते मैडम।
नमस्कार मोहन जी, सवाल पूछिए।
सर लोगों को प्रणाम।
प्रणाम मोहन जी।
जो दुनिया के सभी लोगों को हार्दिक बधाई मैडम। प्रश्न है कि सुरक्षित नेत्रदान
जी
कब कहाँ कैसे करना चाहिए मैडम?
ठीक है
जी। किन किन बीमारियों से ग्रसित लोग नेत्रदान नहीं कर सकता है सर?
ठीक है मोहन जी। हम डॉक्टर शिखा, कौन व्यक्ति नेत्रदान, सुरक्षित नेत्रदान कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जिनको नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते?
तो नेत्रदान हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी उम्र 1 साल हो चाहे उसकी उम्र 85 साल हो। इसके लिए हर इंसान नेत्रदान कर सकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हम नेत्रदान नहीं कर पाते, जैसे कुछ कैंसर्स जो कि आंखों में फैलने का डर रहता है, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जिनसे हमें डर रहता है कि ट्रांसप्लांट के बाद ये कॉर्निया अगर किसी और इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया तो ये इन्फेक्शन उन लोगों में भी फैल जाएगा, जैसे हेपेटाइटिस, HIV, इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हम पहले ही पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और ऐसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं किए जाते। लेकिन इसके अलावा कोई भी एज हो, हम सबसे कॉर्नियल डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं।
अब कुछ ब्लड ग्रुप का भी इसमें वो रहता है?
नहीं, इसमें ब्लड ग्रुप का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कॉर्निया एक ऐसा टिश्यू है जिसमें ज्यादा वेसल्स नहीं होती, ज्यादा खून की कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए इसमें ब्लड ग्रुप का रोल नहीं है।
डॉक्टर शिखा, एक व्यक्ति अगर नेत्रदान का वो करता है, सबसे पहले तुम ये जानना चाहेंगे कि आंखों का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है?
सो ये हमारी आंखों की सबसे आगे की पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम पुतली कहते हैं या कॉर्निया कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, सिर्फ ये ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।
जी, और किसी ने कॉर्निया अपना डोनेट किया, दान किया, तो उससे कितने व्यक्तियों की जिंदगी में हम उजाला ला सकते हैं?
सो अगर कोई डोनेट करता है दो कॉर्नियाज डोनेशन से, आज की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो इससे हम 6 लोगों तक को इसका फायदा पहुंचा सकते हैं और उनकी दृष्टिविहीनता दूर कर सकते हैं।
जी, और डॉक्टर शिखा, किसी की डेथ हो गई है तो मृत्यु के कितनी देर बाद नेत्रदान के बारे में हमें कहां संपर्क करना होगा और कैसे संपर्क करना होगा?
देखिए, आपके आसपास कोई भी आई बैंक हो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है 1919 जिसपे आप फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप जहां पे रहते हैं उसके सबसे पास कौन सा आई बैंक है, और उस आई बैंक में कांटेक्ट करके आप ये आई डोनेशन के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप आई डोनेशन करने में इंटरेस्टेड है, नेत्रदान करना चाहते हैं, तो वहीं से टीम आकर आपके घर आकर और ये कॉर्नियल डोनेशन का कार्यक्रम करते हैं।
यानी उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं, आई बैंक की टीम खुद आपके घर में आएगी। और नंबर आपने बताया
1919 1919 1919
नंबर डायल करके जो है वो बता सकते हैं, निकट परिजन उनको बता। और आई बैंक अमूमन हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर उस पे रहता है?
आई बैंक जरूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो, लेकिन जो कॉर्निया रिट्रीव करने की फैसिलिटी होती है किसी भी मीडियम से बड़े अस्पताल में ये अवेलेबल होती है, और फिर ये कॉर्निया ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जो नियरेस्ट आई बैंक में है, जहां पे ये प्रिजर्व करके फिर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।
अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, थोड़ा दूर मेट्रोपॉलिटन सिटीज छोड़ दें, तो वहां के लोग कैसे संपर्क करें? वहां भी आई बैंक होते होंगे?
हाँ जी बिल्कुल, जो उनके नियरेस्ट आई बैंक है वहां से, या किसी भी बड़े अस्पताल में, या जहां से आपका इलाज चल रहा है, आप वहां के डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें तो वो जरूर आपको आसपास नियरेस्ट आई बैंक के बारे में बता देंगे।
आपने जैसे अभी बताया कि कुछ बीमारियां हैं जिसमें नहीं कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बताया आपने, एचआईवी एड्स बताया, कैंसर बताया, इसके अलावा अगर किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, आंख से संबंधित कोई उसकी सर्जरी हुई है, या उसने कॉन्टेक्ट लेंस अपनी आंखों में लगाए हुए हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति भी डोनेट कर सकता है?
बिल्कुल, आंख में अगर कॉर्निया की बीमारी नहीं है, अगर आपका कॉर्निया बिल्कुल ठीक है, तो आप कॉर्नियल डोनेशन कर सकते हैं, चाहे कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, चाहे आप चश्मा लगाते हैं, चाहे आपको रेटिना की कोई प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा या जिसे हम काला मोतिया कहते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ये सारे मरीज भी कॉर्नियल डोनेशन कर सकते हैं।
और जिसको डोनेट करना है, जिसको लगाना है, क्या जो दृष्टिबाधित जन्म से है, क्या उसको भी कॉर्निया लगा सकते हैं, वो देख सकते हैं?
ऐसे पेशेंट्स की हम जांच करते हैं और हम ये देखते हैं कि कॉर्नियल जो उनका ब्लाइंडनेस है वो किस कारण से है। जिन पेशेंट्स को ये जो अंधापन या ब्लाइंडनेस है ये कॉर्निया के रीजंस के कारण है, इनमें जरूर कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके फायदा हो सकता है। लेकिन अगर जो ब्लाइंडनेस का कारण है वो किसी और रीजन से है, जैसे नस में सूखापन होना, काला मोतिया होना या पर्दा ठीक नहीं होना, ऐसे केसेस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके फायदा नहीं होने की उम्मीद है।
अच्छा, ओडिशा से देश दीप दास हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम से, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो।
हाँ जी नमस्ते।
नमस्कार जी, सवाल पूछिए।
जी मेरा सवाल है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आई डोनेशन?
बेनिफिट्स ऑफ आई डोनेशन, डॉक्टर शिखा, सबसे बड़ा तो यही कि आप किसी की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप, जैसे हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में मैम ने बताया कि अगर हम किसी रंग को नहीं देख पाते, कोई आकार को नहीं देख पाते, तो वो शायद हम तभी समझ पाएंगे अगर हम 5 मिनट आंखें बंद करके अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, किसी कमरे में घूमने की कोशिश करें, शायद हम तभी समझ पाएंगे कि बेनिफिट्स ऑफ आई डोनेशन क्या है। तो जिसने कभी ये दुनिया नहीं देखी, अगर उसको देखने के लिए अगर आंखें मिल जाएं, तो आई थिंक उससे बड़ा बेनिफिट तो पॉसिबल
कोई है नहीं, क्योंकि हाँ। आप सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, किसी की जिंदगी आप रोशन कर रहे हैं। कॉर्निया में, आंखों में जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कब तक प्रभावी रहता है, अगर हमने किसी को ट्रांसप्लांट किया है और वो फिर लाइफ लॉन्ग उसकी आंखों में वो रहता है?
हाँ जी, मतलब ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। वैसे एक बार कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो जाता है तो काफी लंबे टाइम तक आपको इसका बेनिफिट मिलता है। कॉर्निया अगर सब कुछ ठीक चलता है, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती रहती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स अपनी पूरी लाइफ भी उस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के साथ देख सकते हैं और निकाल सकते हैं।
जी, और एक इसमें जो है जैसा कि आपने बोला कि सारी जिंदगी निकाल सकते हैं, कॉर्निया का आपने ट्रांसप्लांट किया तो ये क्या डे केयर सर्जरी होती है या कुछ टाइम तक रुकना पड़ता है?
डे केयर सर्जरी हो सकती है, ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई रूल नहीं है कि हमें पेशेंट को भर्ती करना जरूरी है, बट क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी सर्जरी होती है हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट्स को हम एडमिट कर लें, स्पेशली टीचिंग हॉस्पिटल्स में जहां पे रेसिडेंट्स भी होते हैं तो हम पेशेंट्स को एडमिट करके एक आध दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं,
उसके बाद वो नॉर्मल हाँ बस जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है कि धूप में नहीं जाना वहाँ
थोड़े से हाँ पेशेंट्स को प्रिकॉशंस हम बताते हैं, जैसे अगर टांके होते हैं आंख में तो आंख में पानी नहीं डालना है, आंख में चोट ना लगे, शुरू के कुछ दिनों में हम काला चश्मा लगाने की बात कर सकते हैं, जो आपको दवाइयां बताई गई हैं वो रेगुलरली डाली जाएं, आपके डॉक्टर ने जब जब आपको फॉलोअप के लिए बुलाया है आप रेगुलरली आए, ये सब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है।
पुणे से डॉक्टर गुहा कार्यक्रम में जुड़े हैं, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो
मैडम, गुड इवनिंग, नमस्कार।
गुड इवनिंग डॉक्टर गुहा, वेलकम द प्रोग्राम, कहिए।
थैंक यू। माय क्वेश्चन इज दैट आई एम अ 68 ईयर ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम लो विजन फॉर द लास्ट 20 इयर्स कॉज्ड बाय ड्रग इंड्यूस्ड मैकुलर डिजेनरेशन।
जी,
कैन आई डोनेट माय आईज?
Yes, sir, you can definitely donate your eyes because if your corneas are okay, then your macular degeneration would not affect your donation.
और जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आज का हमारा पब्लिक स्पीक का कार्यक्रम है नेत्रदान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिखा जैन। आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, स्टूडियो के फोन नंबर हैं 2331444 और 0112342105। दिल्ली से बाहर की श्रोता 011 कोड लगाएं। श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 यानी 9289094044। डॉक्टर शिखा, एक ना कुछ इस तरीके की भ्रामक होती हैं या भ्रांतियां होती हैं कि अगर हमने इस जन्म में नेत्रदान किया तो या कुछ किया तो अगले जन्म में शायद हमारी आंखें नहीं, हम दृष्टिबाधित होंगे, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि इस तरीके की भ्रांतियां दूर हों।
बिल्कुल, हम लोग ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम फेस करते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर आई डोनेशन कर दिया तो शायद हमें जन्नत नसीब नहीं होगी या अगले जन्म में भी हम बिना आंखों के पैदा होंगे, तो ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है और हमें आई डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए।
प्रोसीजर के बारे में मैं पूछूंगी, लेकिन इस बीच दिल्ली से धर्मवीर कार्यक्रम से जुड़े हैं। हेलो,
नमस्कार जी।
नमस्कार धर्मवीर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
पहले तो आपको आकाशवाणी पूरी टीम को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी आपको भी।
अच्छा, और नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे दो सवाल है कि डोनेशन करने वाला काला मोतिया वाला व्यक्ति क्या उसकी कॉर्निया कामयाब रहती है क्या, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या कॉर्निया जो है जो रियल डोनेट होता है वो कामयाब नहीं हो पाया एक व्यक्ति के, तो उसको आज आर्टिफिशियल कॉर्निया लगा तो उसको 25% विजन उसका आ चुका है, 100% बिल्कुल नील था, अब 25% आ चुका है। क्या ये अमेरिकन कॉर्निया भी कामयाब है, क्या रेटिना भी आने की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टेस्ट में? धन्यवाद
जी।
नमस्कार धर्मवीर जी, पहले आपका पहला सवाल, जिनको काला मोतिया है वो लोग भी कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं अगर उनके कॉर्निया में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काला मोतिया नसों की बीमारी होती है और वो कॉर्निया पे इफेक्ट नहीं करती। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, अब हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है और आर्टिफिशियल कॉर्निया पे रिसर्च बहुत सारे सेंटर्स में चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी एम्स दिल्ली में, एलवी प्रसाद हैदराबाद में इस पे काफी काम हो रहा है। अभी हम नेचुरल कॉर्निया के लेवल तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम आर्टिफिशियल कॉर्निया का कुछ पार्शियल थिकनेस कॉर्निया में काफी हम आगे बढ़ चुके हैं, कुछ पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट भी किए हुए हैं और हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
डॉक्टर शिखा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक और भ्रांति है कि अगर हमारी आंखों से कॉर्निया या वो निकाला तो चेहरा विकृत हो जाएगा। इनफैक्ट कैसे निकाला जाता है, प्रोसीजर क्या होता है ये?
ये प्रोसीजर जो होता है मुश्किल से 10 या 15 मिनट लेता है और पहले टाइम में आज से 10 साल 15 साल पहले हम लोग पूरी ही आंख निकालते थे और उसमें से फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता था, पर अब हम जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं अब हम लोग पूरी आंख निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ आंख का आगे का हिस्सा निकालते हैं जो हमारे काम आता है और इसलिए हमारा कोई भी फेस डिसफिगर नहीं होता और ये प्रोसीजर भी बहुत जल्दी हम लोग कर पाते हैं
और जिसको लगाना है उसमें भी शायद ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
बिल्कुल।
जिस व्यक्ति का कॉर्निया निकाला जाता है उसको उससे पहले या जिसको लगाया जाता है, दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ, लेकिन दिल्ली से प्रेम कुमार जुड़े हैं, पहले उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो
हेलो। हाँ जी नमस्कार जी।
नमस्कार प्रेम कुमार जी, सवाल पूछिए, स्वागत है।
ये मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ
जी,
जब से नेत्र दान की प्रक्रिया आरंभ हुई है सबसे पहले कितने लोग मतलब सफल हुए, कितने लोगों को सफलता मिली है,
सक्सेस रेट पूछ रहे हैं।
देखिए जितने हमारे ट्रांसप्लांट होते हैं बॉडी में, कॉर्निया उनमें से एक बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट देने वाला टिश्यू है। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जैसे मैंने अभी भी बताई रक्त की कोशिकाएं नहीं होती तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो बहुत पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा सक्सेस देता है और बहुत लंबे समय तक भी ये विजन देता है।
जी हम बात कर रहे थे कि जैसे कॉर्निया निकाला जाता है तो जिस व्यक्ति का निकाला जा रहा है क्या उससे पहले उसका कुछ चेकअप आप लोग करते हैं?
हाँ जी, पेशेंट का पहले हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में डेथ हो, अगर हॉस्पिटल में डेथ है तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, अगर घर में डेथ है कोई वॉलंटरी डोनेशन हो रहा है तो हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, किस कारण से डेथ हुई, किन कंडीशन में डेथ हुई, क्या इन्फेक्शन था या कुछ और दिक्कत थी जो कि डायग्नोज था, और प्लस सारी हिस्ट्री लेने के बाद अगर हमें लगता है कि ये फिट फॉर डोनेशन है तो भी हम पेशेंट का एक ब्लड सैंपल लेते हैं जिसमें हम बेसिक टेस्ट और वायरल मार्कर्स जैसे मैंने पहले बताया हेपेटाइटिस, एचआईवी, कोई भी ऐसी बीमारियां जो हमें डर है कि ट्रांसमिट ना हो जाए जिनको कॉर्निया लगना है वो सारी हम एक्सक्लूड करते हैं, तो ये सारे उनके टेस्ट किए जाते हैं।
महाराष्ट्र से शंकर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो
हेलो।
नमस्कार शंकर जी, सवाल पूछिए।
हेलो
जी, आवाज आ रही है आपको हमारी?
आ रही आ रही।
आप सवाल पूछिए।
हेलो,
आप बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
मैडम गुड इवनिंग सबको।
नमस्कार।
हाँ, मेरा एक पहला सवाल है कि आंखों के कौन कौन से पार्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं
जी,
और दूसरा ये है कि जो आप जिसके आंख पूर्ण टोटल डेवलप नहीं हुए ऐसे आदमी को या पेशेंट को ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है क्या? थैंक यू।
नमस्कार शंकर जी। जैसे हम बात कर रहे हैं आंख का सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट या जिसे हम पुतली कहते हैं सबसे आगे की लेयर जो कि पारदर्शित होती है सिर्फ वो ही ट्रांसप्लांट की जाती है, और जिसकी आई डेवलप नहीं होती उसमें भी हमें कारण देखना पड़ता है कि किस लेयर में प्रॉब्लम है। अगर कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हो सकता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से, अगर उनके बाकी हिस्सा पीछे का सब कुछ नॉर्मल है तो ऐसा हो सकता है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से उनको विजन आ जाए, तो ये पेशेंट टू पेशेंट देखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं
जी। और दूसरा जैसे हम पूछ रहे थे कि जिसको कॉर्निया लगाया जाना है उनका भी कुछ चेकअप वगैरह होता है, बॉडी एक्सिस्ट करेगी या नहीं करेगी?
उनका हम लोग बेसिक चेकअप करते हैं कि वो सिस्टमिकली स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाई रिस्क पेशेंट नहीं है, लेकिन अलग से ऐसा कुछ जैसे एचएलए टाइपिंग वगैरह ऑर्गन डोनेशंस में होती है वैसे कॉर्निया में जरूरत नहीं होती
जी। जिस व्यक्ति ने नेत्रदान के लिए डॉक्टर शिखा रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी मृत्यु के बाद निकट परिजनों ने एक तो कितनी जल्दी बता देना चाहिए सबसे पहली बात तो ये आई बैंक को,
जितना जल्दी हम लोग सूचित करेंगे आई बैंक को उतना जल्दी ये प्रोसेस होगा और क्वालिटी जो आई डोनेशन की होगी हमें उतनी अच्छी मिलेगी। फिर भी हम लोगों का 8 to 10 आवर्स का टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम रिट्रीव करना पॉसिबल होता है।
असम से राहुल का एक सवाल है। हेलो हेलो। हाँ राहुल, आपको हमारी आवाज आ रही है? राहुल को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप कह रहे थे कि 8 से। हेलो
हेलो जी,
सवाल पूछिए।
ये मैम, मैं असम से बोल रही हूँ।
हाँ, सवाल पूछिए राहुल।
मैम मैं इसको जानना चाहती हूँ कि अगर हम नेत्रदान करेंगे तो इसकी प्रक्रिया कैसे है?
नेत्रदान की प्रक्रिया पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने रजिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं।
जैसे हम लोग दो तरह से इसको कर सकते हैं, या तो हमने प्लेज फॉर्म भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। दोनों ही केसेस में ये जरूरी है कि आपके निकट परिजनों को इस बारे में पता हो कि आपकी ये इच्छा है। तो किसी की भी जब मृत्यु होती है तो उनके निकट परिजनों को नियरेस्ट आई बैंक में इन्फॉर्म करना पड़ता है, और वहां से टीम आती है आपके घर पे, टीम अपने आप आती है और वो कॉर्नियल डोनेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करती है।
डॉक्टर शिखर, इसी बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि आई बैंक को बताए कितनी जल्दी बता देना चाहिए कि, और जितनी देर में आई बैंक की टीम उस व्यक्ति तक पहुंचती है उस समय तक निकट परिजनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एसी ऑन करें ना करें, आंखें बंद करें, या कैसे उस आदमी का?
बिल्कुल, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका हेड का लेवल या सर का लेवल थोड़ा सा पैरों के लेवल से ऊपर होना चाहिए। उनकी आंखें खुली ना हो, उसके लिए आंखें बंद करके उस पर हम गीली कॉटन रख सकते हैं ताकि आंखों में ड्राइनेस ना हो। ऊपर अगर कोई पंखा चल रहा है तो वो हमें बंद कर देना चाहिए, एसी हम ऑन रखें ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे।
थाने से गुरुनाथ का एक सवाल है। हेलो
जी मैम, नमस्ते।
नमस्कार गुरुनाथ जी।
जी मैम
जी, सवाल पूछिए।
हाँ जी जी, मेरा क्वेश्चन है मैम, जैसे मतलब कुछ केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि मतलब 20-22 साल तक मतलब जो यंग एज में मतलब उनके ठीक ठाक मतलब सब कुछ दिखता है रोशनी उनकी आंखों की, उसके बाद में जो धीरे धीरे मतलब रोशनी कम होती जाती है और 2-3 साल में बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है
जी।
क्या है मतलब है, उनका जो क्रोनिया का प्रॉब्लम होता है और उनमें भी क्रोनिया ट्रांसप्लांट हो जाता है। और दूसरा मेरा सवाल ये है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब दिन भर तो खेलते कूदते सब कुछ उनका ठीक ठाक दिखता है, जैसे मतलब रात होती है तो वो एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, तो उनको जो आंख की तकलीफ होती है
जी,
तो मैम 21 वजह से मतलब होता है, एक मतलब रात का अंधे बनाए जाए
जिनको रात शाम में या सूरज ढलने पर नहीं दिखता।
नमस्कार गुरुनाथ जी, तो पहले हम आपके पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। तो 20-22 साल तक नॉर्मल दिखते हैं और उसके बाद दिखना कम हो जाता है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है ये कॉर्निया से रिलेटेड हो, जैसे केराटोकोनस करके बीमारी होती है, या जरूरी नहीं है, हो सकता है कॉर्निया में कोई इन्फेक्शन हो गया हो और वो इन्फेक्शन बढ़ के कॉर्निया में सफेदी आ गई है, पुतली ट्रांसपेरेंट होने की बजाय सफेद हो गई है जिसके कारण दिखना बंद हो जाता है। कई बार किसी चोट लगने के कारण, कॉर्निया में डैमेज होने के कारण, उसके कारण भी रोशनी कम हो जाती है। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे नसों की बीमारी हो सकती है, काला मोतिया हो सकता है, रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर होने से रेटिना हटने का डर रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण रोशनी कम हो जाती है। रही आपके दूसरा प्रश्न, तो जिन लोगों को रात में प्रॉब्लम होती है दिन में ठीक रहते हैं, ये एक पर्टिकुलर तरीके की नाइट ब्लाइंडनेस होती है और यूजली इसका कारण रेटिना के कारण होता है तो, और वो कॉर्निया से रिलेटेड नहीं होता, तो इन केसेस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता।
हैदराबाद से कल्याणी कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं।
अच्छा,
हेलो।
हेलो
जी कल्याणी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
मैडम मैं हैदराबाद से मिस कल्याणी में बात कर रहे हैं।
जी जी, सवाल पूछिए कल्याणी जी।
मैडम फ्रॉम विच एज वी कैन डोनेट आईज एंड व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? मैडम
नाइट ब्लाइंडनेस अभी आप बता रहे थी डॉक्टर का।
सो डोनेशन की कोई भी एज नहीं होती, हम लोग सारी डोनेशन, स्पेशली जो भी वॉलंटरी डोनेशन आती हैं, वो हम सारी डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं। और हॉस्पिटल बेस्ड अगर कोई डेथ हुई है तो पहले पेशेंट को प्रॉपर असेस किया जाता है किस रीजन से डेथ हुई है, अगर वो हमारे क्राइटेरिया में फिट पाया जाता है तो हम वो डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी कोई भी एज एज सच कोई बार नहीं होता कि हम बियॉन्ड दिस एज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस जैसे हमने बात की, वो रेटिना की प्रॉब्लम होती है मेनली, कॉर्निया से कम रिलेशन होता है उसका।
जी, तो अभी आपने जो हम बता रहे थे, और कोई एहतियात बरतनी चाहिए निकट परिजनों को, जो आप कह रही थी कि एसी ऑन रखें, सिरहाना थोड़ा तकिया रखें ताकि सर ऊपर रहे?
जैसे मैंने कहा कि जितना जल्दी वो आई बैंक को कॉन्टेक्ट करते हैं और जितना जल्दी वो टीम आके रिट्रीव कर पाती है उतना हमें बेटर क्वालिटी ऑफ कॉर्निया मिलेगा। उनके जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे वो ध्यान रखें कि टीम को जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए ताकि टीम डिसाइड कर पाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉर्नियल डोनेशन में।
जी इसके अलावा अगर मांग और आपूर्ति जो चीज होती है ना, डिमांड एंड सप्लाई देखी जाए, तो जितने कॉर्निया ट्रांसप्लांट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं ऑब्वियसली डिमांड की तो बहुत लंबी लाइन होगी, तो बहुत जरूरी है डॉक्टर शिखा की जागरूकता आए और वो जो गैप है वो कम हो।
बिल्कुल इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि जितने हम लोग एक साल में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अमूमन उतने ही लोग हमारी कॉर्नियल डोनेशन मतलब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट रिक्वायरमेंट की लिस्ट में ऐड हो जाते हैं हर साल, तो जो डोनेशंस हो रही है हमारी अभी भी वो बहुत कम है और जिनको नीड है वो लिस्ट बहुत ज्यादा है।
बहुत जरूरी है कि जागरूकता आए और लोग जो है नेत्रदान के लिए आगे आए क्योंकि नेत्रदान महादान है और आप किसी का जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। आगरा से श्याम सुंदर शर्मा का एक सवाल है। हेलो
हेलो
जी नमस्कार नमस्कार सवाल पूछिए।
मैं यह चाह रहा हूँ जैसे कि मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ
जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप दृष्टि बाधित हैं, इसके आगे आप क्या पूछ रहे हैं?
कह रहा हूँ मेरी दोनों मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ
जी,
तो मेरी एक्सीडेंट के कारण आंखें खराब हुई थी
जी।
हाँ तो जैसे कि मैं आई डोनेशन करवाना चाहता हूँ अपनी मतलब आपने लिए, हाँ तो उसमें कितना खर्चा आएगा?
जी ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं एक्सीडेंट से शायद दृष्टि बाधित हुए हैं तो कितना खर्चा आएगा?
देखिए अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी सरकार की तरफ से ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। कॉर्नियल डोनेशन वैसे भी वॉलंटरी होता है तो इसके लिए आपका कॉर्निया के लिए कोई खर्चा नहीं आता। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं वहां आपको दवाइयां भी मुफ्त में मिलती हैं और ऑपरेशन भी फ्री में होगा
जी, उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन डॉक्टर शिखा कराए हुए उनके निकट परिजन उनको बता देते हैं और वो टाइमली पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और लास्ट मोमेंट पे उसे लगता है कि नहीं अब मुझे आई डोनेट करनी है, उस केसेस में निकट परिजन या रिश्तेदारों को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि प्लेज फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने प्लेज फॉर्म नहीं भी भरा है तो वो लोग भी आई डोनेट कर सकते हैं। प्लेज फॉर्म हम लोग सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों में और ताकि आप अपने निकट परिजनों को बता पाएं इसलिए प्लेज फॉर्म भरवाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने नहीं भरा आपके निकट परिजन जैसे ही नियरेस्ट आई बैंक में संपर्क करेंगे आई डोनेशन पॉसिबल हो जाएगा।
डॉक्टर शिखा जैसे अभी हमने शुरू में कहा था कल से यानी 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, उद्देश्य यही होता है कि हम जागरूक करें और लोग आई डोनेट करें, क्या क्या प्रोग्राम्स या क्या क्या जागरूकता अभियान हॉस्पिटल्स में भी चलाए जाते हैं ताकि लोग एनकरेज हों इस तरह?
बिल्कुल हॉस्पिटल्स में बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसमें हम लोग बहुत तरीके के कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं जैसे पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन मेकिंग कॉम्पिटिशन, फिर जो जिन्होंने आई डोनेट की है उनकी फैमिलीज को भी सम्मानित किया जाता है। बहुत बार हम लोग जिनको आई डोनेशन मतलब जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है और उनकी लाइफ उससे कैसे चेंज हुई है उन लोगों को भी हम कई बार बुलाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और इसकी इम्पोर्टेंस पता चले।
जी समय कम है, मेरठ से महेंद्र का एक सवाल है, जल्दी से सुनते हैं। हेलो
जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
जी सवाल पूछिए।
जी मैं महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है
जी
और वो नेत्रों की रोशनी कब तक रह सकती है, कई घंटे तक रह सकती है और घर पर आके वो टीम ये दान ले सकती है या नहीं?
जी जल्दी से क्योंकि समय।
बिल्कुल घर पे ही आके ये आपका आई डोनेशन हो जाएगा, इसके लिए आपको कहीं भी पेशेंट को या बॉडी को किसी भी हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जी और समय अब लगभग डॉक्टर शिखा समाप्ति हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही डॉक्टर शिखा जैन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जिज्ञासाएं जो थी वो लोगों की बताई और हम उम्मीद करते हैं कि लोग प्रोत्साहित होंगे और नेत्रदान के लिए आगे आएंगे, प्लेज करेंगे, फॉर्म भरेंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। newsonair.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। फिलहाल नमस्कार।